आप सभी का हम लोग जम्मू गोरे विधान समिति की तरफ से हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे महाराज जी श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जिसका कि शास्त्र में बहुत अधिक आपको बताया गया है, इस कलयुग में आप अनेक प्रकार के साधुओं को सब स्थानों पर देखेंगे, मगर हम लोग केवल मात्र शास्त्रों में विश्वास करते हैं। इसलिए जैसे कि हम लोगों को अगर ये पता करना हो कि हमारे पिता कौन है, तो हम लोगों को बताने के लिए एकमात्र अथॉरिटी जो है वो हमारी माता जी हैं। इसी प्रकार से हमारे को भगवान के विषय में बताने के लिए, या फिर हम लोगों को किस प्रकार से इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के चरणों की हम लोगों को प्राप्ति होगी, उसके विषय में एकमात्र जो अथॉरिटी है हम लोगों को बताने के लिए वो है शास्त्र। और उन शास्त्रों में बतलाया गया कि कलयुग में जो चार संप्रदाय हैं वो प्रमाणिक संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति साधुओं के पास में आकर के उनका संग करता है, उनसे मंत्र प्राप्त करता है, तभी उसको उन मंत्रों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो उन चार संप्रदायों के अंतर्गत हम लोगों का जो संप्रदाय है श्री ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय एक अन्यतम है और बहुत ही प्रोमिनेंट संप्रदाय है, जिसका कि सर्वत्र पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। और अभी उसी संप्रदाय का जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से आगे चलते हुए वेद व्यास जी, फिर मध्वाचार्य जी, और अभी उसी परंपरा में हमारे गुरु महाराज जी जो हम लोगों के यहाँ पर उपस्थित हैं सबके समक्ष में, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे महान पुरुष हम लोगों का कल्याण करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं। हम लोग किसी भी प्रकार के जो प्रश्न है शास्त्रों से संबंधित, श्रीमद्भागवतम, भगवद्गीता, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि, इनमें से हमारा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हम लोग महाराज जी के सामने यहाँ पर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के आपका प्रश्न का यहाँ पर स्वागत है। हमारे महाराज जी प्राय विदेश के सभी देशों में आजकल प्रचार कर रहे हैं कितने समय से लेकर के, और कुछ भक्त आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु ऐसे महाराज जी के हजारों हजारों शिष्य सब स्थानों पर वर्तमान हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न, किसी भी प्रकार का आप लोगों का संशय आप महाराज जी के सामने रख सकते हैं, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अभी आप लोग हम लोगों के पास में ये हैंड आउट्स हैं जो मैं पढ़ भी सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो हम लोग बांट भी सकते हैं। कॉपी है कि आप अगर देना चाहें तो सबको, आप लोग कॉपी देख सकते हैं और उसके बाद में
आप सभी अपने प्रश्न स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का यदि किसी भी विषय में प्रश्न हो आप महाराज जी से कर सकते हैं, नहीं तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग ही आपसे प्रश्न पूछेंगे।
प्रश्न नहीं पूछेंगे।
जम्मू में हम शायद दूसरी या तीसरी बार आए।
महाराज जी पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर दो दिन बाद। लास्ट ईयर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था श्री हरि मंदिर में, जहाँ पर अभी भी हो रहा है।
हम लोग वैदिक ज्ञान, वैदिक योग और वैदिक आचार का विश्व भर में प्रचार करते हैं। आई मैं समझता हूँ भारत के जितने भी स्थान हैं, बड़े बड़े और विश्व के जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं, उनकी राजधानियां हैं, बड़े बड़े शहर हैं, आज मैं उनके लिए 15वीं या 16वीं बार विश्व की परिक्रमा करके अभी लौटे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और इंग्लैंड के मेयरों ने हमारे भाषण को सुनकर, हमारे वैदिक विचारों को सुनकर हमको वहाँ की सिटीजनशिप और मानव उपाधि दिया। और उन्होंने अमेरिका का सिटीजनशिप भी मुझे दिया। हमारा ये वैदिक कल्चर या वैदिक योग या विचार धारा भारतवर्ष के अतिरिक्त और विश्व में कहीं नहीं है। यदि किसी को सुख और शांति पाना है, चाहे वो लौकिक सुख हो या पारलौकिक, अपने जीवन में सुख और शांति उपलब्धि करनी है, भारतीय संस्कृति के विचारों में उसे प्रवेश करना होगा और उनके साथ में उनका अनुसरण करना भी अत्यंत आवश्यक। विश्व में मैं जहां जहां गया करोड़पति लोग, बड़े बड़े उच्च कोटि के राजनीतिक लीडर, बड़े बड़े वहां के सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े संवादिक लोग मेरे पास आए और बहुत से प्रश्न किए। मैंने अपने उत्तर से सबका समाधान किया और वे बड़े प्रसन्न हुए। सबसे पहले हमारे वैदिक विचार में लिखा है अहिंसो परमो धर्म, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। क्या तात्पर्य है इसको समझिए। विश्व के सारे लोगों ने, हमारे भारतवर्ष के आधुनिक जो विद्वान हैं, उन लोगों ने भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किंतु इसका यथार्थ तात्पर्य उपलब्धि उन लोगों ने नहीं की। प्राणी को वो मनुष्य ही समझते हैं, मनुष्य मात्र। इसके आगे पेड़ों में जीवन है, पक्षियों में जीवन है, गाय बैल पशु पक्षी कील पतंग घास में भी जीवन है। वहां के लोग इस विशेष को नहीं जानते, किंतु ये भारतवर्ष में ही ऐसा है। पेड़ों में भी जीवन है, गाय बैल भैंस पशु पक्षी में भी जीवन है। वे लोग भी मरने से डरते हैं, घबराते हैं,
वही लोग भी सुख चाहते हैं। अभी पश्चिम देशों की सभ्यता के संबंध में सुनिए, अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में अथवा इराक में युद्ध के आज में कितने लोग मारे गए, ईसाई धर्म में मरना अनुचित पकड़ा गया है, किंतु कहां मारे गए। यदि विश्व में कोई डरपोक जाति है तो वो अमेरिकन जाति है, और उसका प्रेसिडेंट महाशय बुश जी सबसे डरपोक विश्व में व्यक्ति है, वे सबसे डरते हैं। किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति वहां पर अब नहीं जा सकता। तो ये कहां भी मनुष्य जाति पर या किसी पर मांग अहिंसा, हिंसा मत करो, ये कहां पर मांग। दूसरी बात एक और समझिए, हमारे भारतवर्ष में लिखा अति अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देव भव, अर्थात अपने माता पिता का आदर करो। अतिथि लोग आते हैं उनको देवता मान करके पूजा करो, सज्जनों का आदर। आज कहां ये सब दिखी, जो भारतवर्ष में भी कहां लोग मानते हैं। तीसरी बात एक चीज को समझिए, जहां गीता है, भागवत है, उपनिषद है, उसमें बतलाया गया यह शरीर हाड़ मांस रक्त पैखाना और पेशाब की एक थैली, ये पुराना फटा हुआ एक वस्त्र भी है जो आत्मा इसको बदल दी। इसलिए जो ये समझते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं और ये शरीर से संबंधी हमारे सगे भाई माता पिता बंधु हैं, वो यथार्थ सनातन धर्म को नहीं समझ पाते। विशेष करके विदेशों में है, हमारी बातों को लोग इसलिए अधिक पसंद किया। मैंने बतलाया ऐसा कौन है विश्व ब्रह्मांड में जो समस्त साइंटिस्ट मिलकर के भी, डॉक्टर वैद्य मिलकर के भी किसी के एक सेकंड के लिए बुढ़ापा और मृत्यु को रोक सके, नहीं रोक सकते, क्योंकि यह शरीर तो मरा हुआ है, आत्मा निकली और बस सड़कल गया। जो लोग मूर्ख हैं वो शरीर को संतुष्ट रखने के लिए, शांति रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए चेष्टा करते हैं, वो सर्वथा मूर्ख है। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को, आत्मा माने होता है मैं को समझने की चेष्टा नहीं की इस जीवन में, और हाड़ मांस रक्त की थैली को ही मैं समझने की चेष्टा की, वो लोग कभी भी जीवन में सुख और शांति नहीं पा सकते, क्योंकि आत्मा के लिए तो कुछ किया नहीं। यदि अपने वस्त्र के लिए ही सब कुछ करते हैं और अपने के लिए कुछ नहीं करते तो आप सुखी कैसे होंगे। सही तो आज नकल जाएगा ही, आज कल परसों वर्षों में जरूर जाएगा ही, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। यदि ये ज्ञान हो तो आज हमारे कश्मीर की समस्या मिनटों में सुलझ जाए। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो ये समझा सके हिंदू और मुसलमानों के खुदा अल्लाह भगवान और क्रिश्चियंतों के गॉड, बौद्धों के बुद्ध अलग नहीं है। हमारे देश के हिंदुओं के भगवान, मुसलमानों के अल्लाह खुदा अलग नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड के क्रिश्चियनों के गॉड भी अलग नहीं है, एक ही है। किंतु धर्म के तह में ना पहुंचने के वजह से सारी गलतियां हो रही हैं, कहीं भी विश्व में सुख और शांति नहीं है। और जिसको इस विषय का ज्ञान हो गया वो पूर्ण रूप से सर्वत्र ही सुखी रह सकता है, उनको कहीं भय नहीं, विश्व में उनको कहीं मरण का भय नहीं। क्यों? परीक्षित महाराज जी को सर्प काटे का 7 दिन के बाद ही यह अभिसंपात हुआ और उन्होंने भागवत और ये दिव्य ज्ञान वेद शास्त्रों की बातों को सुना कि ये शरीर तो मरणशील है, आत्मा अजर अमर है। भागवत सुनने के बाद में उनके गुरु जी ने पूछा, अब तुमको मरने से डर है? और डर काहे का? मैं जब जान गया कि ये शरीर तो आजकल मरा हुआ हुआ है और आत्मा अजर अमर है, इसको कोई नहीं मार सकता, शस्त्र नहीं छू सकता, पानी से सुखा नहीं सकती, हवा इसको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, तो डर काहे का? अब सर्प हमारे शरीर हाड़ मांस को काटेगा किंतु आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। इसी तरह का यह दिव्य ज्ञान कश्मीर में भी मौलवी लोग भी समझें, तत्व को हिंदू लोग भी समझें, तो फिर झगड़ा किस चीज का? एक बात उन लोगों को और भी बड़ी पसंद आई, मैंने कहा हमारे सनातन धर्म के अतिरिक्त जितने भी दूसरे धर्म हैं वे गॉड का, अल्लाह खुदा का, किसी का वो रूप नहीं मानते, किसी का भी रूप नहीं मानते, उनका कोई गुण नहीं मानते, तो ऐसे भगवान या अल्लाह खुदा जिसका रूप है, नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, जिसमें दया नहीं है, तो उसको मानने से लाभ क्या है? बेकार का वो फालतू भगवान है। हम लोग के सनातन धर्म के भगवान ऐसे नहीं, वो जीवों के दुख दर्द को समझते हैं। बाइबल में 1 चैप्टर में ये लिखा गया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन, माने क्या? गॉड ने अपने रूप के समान मनुष्यों को बनाया, तब भगवान का रूप है ना, उनकी दया है, उनमें सब गुण है। मुसलमानों के कुरान शरीफ में भी ऐसा लिखा गया, इन्ना लहा खलाका मिन सूरत ही, भगवान का सूरत है, ऐसा ही सूरत सबको बनाया, उनमें गुण है, उनमें दया है। मुसलमानों में भी ऐसा समझा जाता है, मरने के बाद में एक दिन सबका विचार करते हैं ये खुदा, तो विचार करने वाले कौन है जिसका शरीर नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है? इसलिए यदि वो लोग नहीं मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, तो बाइबल से जरा एक वर्ड ये हटा दे तो, और मुसलमान भी कुरान शरीफ से इसको हटा दे तो, इन्ना लहा खलाका मिन सूरत। इसलिए सभी धर्म के जो मूल चीजें हैं एक है, अलग अलग कुछ नहीं, जीवात्मा अजर अमर है। और यह जीवात्माएं जो एक एक शरीर में है वे भगवान के अंश हैं। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दो है, आत्मा तो अलग अलग है, वो दुख का अनुभव कर रही है, सुख का अनुभव करती है, और अपने अपने कर्मों के फल से जिस योनि में भटक रही है। ऐसा मत समझेंगे जो हम मनुष्य ही हैं, मनुष्य मरने के बाद में मनुष्य होंगे। यदि आपके कर्म ठीक नहीं है तो आप गधे घोड़े सूकर कुकर सब कुछ होकर क्या करते हैं, इतने जूनियों को भ्रमण करके आए। इसके उदाहरण हैं, इसके प्रमाण ठोस हैं। हमारा वेद वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है, साइंटिफिक बेसिस पर है। आज का साइंस अभी इतना उन्नत नहीं हो गया जो आत्मा को समझ सके, किंतु हमारी पूर्वजों ने इसका अनुसंधान किया, इस चीज को समझा और जगत को शिक्षा दिया। इसलिए भारतवर्ष तो दरिद्र है, इस समय पैसा मांगने के लिए विदेशों में जाते हैं। मैं विदेशों में जाकर के गर्व से कहता हूं, हमारा भारतीय कल्चर इतना उन्नत है कि एक बिंदु देने से सारा विश्व तृप्त हो सकता है, सुखी और शांति हो सकता है। इसमें इतने अनमोल उपदेश हैं, विश्व में कहीं भी नहीं। इसलिए सुनकर के उधर बड़े बड़े लोग, रईस लोग, विद्वान लोग, धनी लोग, साइंटिस्ट लोग, कॉलेजों के, विश्वविद्यालयों के डीनर और प्रिंसिपल लोग हमारे वहां पर शिष्य बनते हैं और इसका विदेशों में प्रचार करते हैं। आज विदेशों में सर्वत्र हमारे टीचिंग सेंटर है और वहां पर इसी भारतीय विचार, भारतीय योग और भारतीय ज्ञान का प्रचार। योग माने समझिए कि किसको योग कहते हैं, ए प्लस एक इज इक्वल टू टू, दो, ये तो योग हुआ ना, एक और चार पांच, ये योग हुआ ना? एक में यदि एक ही कोई वस्तु है उसका योग नहीं होता। आजकल जो योग हम देखते हैं, चीन में देखते हैं, भारत में भी देखते हैं, जापान में देखते हैं, हाथ ऊंचा का श्रम करना, ये योग करना, इसमें योग कहां है? योग होता है इसके अंदर में आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा है, उन दोनों का कैसे योग हो, जिस क्रिया के द्वारा संपादित होता है उसको योग कहते हैं। हमारे गीता में, वेदों में, उपनिषदों में, गीतो उपनिषद में इसी चीज की बात ला है। मनुष्य जन्म लेकर के भगवान के साथ में अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से और अपनी सेवा की वृत्ति से यदि योग नहीं कर दिया तो वो योग नहीं। इसलिए मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि जो इस विषय में एक्सपर्ट हो, जिसकी अनुभूति इस विषय में आत्मा परमात्मा के संबंध में है, जहां से हम भूल करके आने से हमारी ये संसार में दुर्गति हो रही है। करोड़ों वर्ष पहले रावण भी था, जरासंध था, हिरण्यकश्यपु थे, उसमें भी अन्याय अत्याचार होता था, अभी भी हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये संसार जेल खाना है, अपने अपने कर्मों का फल भोग कर रहे हैं, कजे कब किया, अनादिकाल से किया। ऐसे बहुत से आत्माएं हैं जो कभी बद्ध नहीं होती, वो नित्य मुक्त हैं, कभी उनका बंधन नहीं हुआ, सब समय सुखी हैं। एक ऐसी भी परिस्थिति है जहां पर ऐसा शरीर नहीं है, देवताओं का भी सूक्ष्म शरीर है, वायु का, उससे भी ऊपर जाइए, अग्नि का है, उससे भी ऊपर चले जाइए, शुद्ध आत्मा का शरीर है, उसी को गोलोक वृंदावन का। इस तरह से यदि कोई इन विचारों को कर करके उस प्रभु को, जिसको हम छोड़ करके, जिसको भूल करके हम संसार में रथ पच रहे हैं, सवेरे उसको एक बार प्रणाम कर दिया, उन्होंने अपने नाम में सारी शक्तियां भर दी हैं, अब जो इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाए। वाल्मीकि की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, वो राम राम नहीं कर सके अपने पापों की वजह से, तो मरा मरा कह करके देखिए कैसे अजर अमर था। अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र को पी लिया फिर छोड़ दिया, ये मिथक ही नहीं है, झूठी बात नहीं है, डेड लैंग्वेज नहीं है, हम लोग डेड हैं इसलिए इसको समझ। इसलिए अपने हृदय को इतना विकसित करना होगा कि उन चीजों को समझ करके हम भारतीय संस्कृति को पालन करें और इसका प्रचार कर सके, तभी यहाँ के कश्मीर की, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, चाहे अमेरिका और राष्ट्रों की, ये सब समस्याएं सुलझ सकती हैं, अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के नाम में विश्वास किया जाए और प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान को प्रणाम करके चलो, भगवान का स्मरण कीजिए, देखे जी विपत्ति अपने आप कट जाए। आज लाखों लोग देश में विदेश में इसका पालन कर रहे हैं सुखी। इसके बाद भी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। जरा जोर से बोलेंगे बेटी,
मनुष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए
जिस भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया, जो हमारा सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सुख दुख के नियंता सभी कुछ है, विश्व ब्रह्मांड के जो एक सेकंड के अंदर में करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड का ध्वंस करके नई सृष्टि भी कर सकते हैं, जो लोगों के विचारों को बदल सकते हैं, ऐसे प्रभु को जरा सवेरे उठ करके शाम को उठकर जरा प्रार्थना कीजिए, इसी को कहते हैं भक्ति योग। बस सहज रूप में आप लोग सुखी शांति हो सकते हैं और प्रभु को भी पा सकते, प्रार्थना से बढ़ करके और कुछ नहीं, वो हृदय में बसते हैं ना, जब ये आप प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे।
और कोई प्रश्न?
महाराज आपने कहा कि वैदिक संस्कृति का प्रचार करते हैं, तो भारत में तो सिर्फ दो भाग का एक पूरी मैप रेस जो कहते हैं ना दौड़ चल पड़ी है, दो भाग
हाँ। यहाँ तक कि
संस्कृति का रहने
का, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी बड़े बड़े मठाधीश लोग वो सुख प्राप्त कर रहे हैं जो राजाओं को और महाराजाओं को और कैबिनेट मंत्रियों को नहीं है, उन धर्म गुरुओं और तत्व ज्ञान ये सब कुछ नहीं जानते। मैंने कहा कि उसके भीतरी तत्व में आप प्रवेश कीजिए, ऐसे एक्सपर्ट यदि हों तो भोगों से दूर रहने वाले हैं और यथार्थ रूप में इसका वो अनुभव करते हैं, उनसे समझ करके भारतीय संस्कृति का प्रचार, तभी चाहे आप भारतवर्ष में रहिए या विदेश में रहिए सुखी रह सकते हैं। इसलिए आज भारतवासी भी जहां तक जो लोग भूल चुके हैं वो बड़े दुखी हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और की तो बात करिए दूर रखिए, यहाँ के जितने भी बड़े बड़े राजनैतिक लीडर हैं, ऐसा कौन सा लीडर कुछ लोगों को छोड़ करके आज बचा है जो घूस नहीं लेता, चरित्र जिसका, जितने बड़े बड़े डकैत खूनी है वो आज राजप्रतिनिधि होकर के रक्षा मंत्री बन रहे हैं, जब तो और किसकी बात कहा है। भारतवर्ष में जहां के विदेश में मैंने यही एक सुना, भारत जैसा घूसखोर और कोई जगह, मुझे बड़ी लज्जा है। फिर मैंने आध्यात्मिक प्रश्नों से उनको संतुष्ट किया उत्तर।
महाराज ये नहीं लगता कि विदेशों में प्रचार करने की जगह इस समय हमें जो भारत में अपनी पुण्य भूमि कहते हैं देवताओं, यहाँ पर वैदिक धर्म का ज्यादा,
देवताओं की भूमि थी किंतु दैत्यों ने इसे अब जीत लिया है, साधु समाज भी कुछ बिगड़ गया है, बिगड़ेल हो गया है, उसमें बहुत से कोटि कोटि में एक दो चार व्यक्ति होंगे जो यथार्थ साधु, ऐसे साधुओं को निकाल लेना बड़ा था कठिन है, नहीं तो ये जगत चलता नहीं है, जगत उपनिषद में भी ऐसे सब तरफ
जिस आध्यात्मिकता की आप बात करते हैं वो आध्यात्मिकता जो स्पिरिचुअलिज्म वो सोसाइटी के केवल 2% लोगों के तभी होता है, बाकी 98% लोग जो
देखिए ये काल का कुछ विक्रम है, काल का ऐसा है, सतयुग में ऐसा एक युग मान लिया गया है, उसमें बुद्धि निर्मल होती है, व्यभिचार लंपट और ये घुसखोरी इत्यादि नहीं करते, हृदय निर्मल, वातावरण निर्मल रहता है, पानी निर्मल रहता है, हवा, आजकल तो हवा पानी कुछ भी निर्मल नहीं, तो लोगों का विचार कैसे शुद्ध हो, इसलिए उनके ही हृदय में आजकल दैत्य दानव बसे हुए हैं, ये भगवान की कृपा से नहीं हो सकते, इसलिए बहुत इन्हीं दिनों हैं जरूर। ये देखिए एक आपको साइंटिफिक बात बतलाऊं, जैसे पानी है, माने के कोई बहुत बड़ा सरोवर है, एक पत्थर फेंक दीजिए उसमें से तरंगे उठती हैं, एक नहीं असंख्य तरंगे उठती हैं, और वो तरंगे चारों तरफ की ओर छोर को छू देता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, पत्थर फेंका उसे तरंगे हुई और वो तरंगे छोर तक पहुंची, उसी तरह से ये विश्व ब्रह्मांड में जहां तक शून्य है इसमें तरंगे हवा की उठती है, उसमें से यदि कुछ भी बुरा निकलता है तो वो सब जगह फैल जाता है, और इसमें भगवान का यदि कोई नाम किया जाए, धार्मिक कृत्य किया जाए, उससे भी तरंगे उठती हैं जो विश्व को और छोर से छू करके उसे पवित्र बना दे। इसलिए हमारे ऋषियों ने हरिनाम संकीर्तन जोर से नाम उच्चारण करने का महत्व बताया। यदि संसार में जो पॉल्यूशन है शब्द का, इसी से दूर हो सकता है। और कोई दूसरा, सच्चे उपदेश, सच्चे विचार और भगवान का नाम कीर्तन हो, इससे ही जगत का कुछ कल्याण। और कोई दूसरा उपाय आप लोग भी नहीं सोच सकते, ये कैसे ये जगत का ये सब चीजें स्थितियां सब क्या राजनीतिक लीडरों के द्वारा होगा, या 10-50 बुश महाशय आ जाएं और इंग्लैंड के क्या है
टोनी ब्लेयर
आ जाएं, हो जाएगा? इसलिए कुछ नहीं कर सकते, ये तो खुद ही भ्रष्टाचार में, उनके विचार शुद्ध है। इसलिए जिनके विचार शुद्ध हैं भगवान का नाम सब कुछ में करते हैं, उससे जगत पवित्र होगा, लोगों की भावनाएं अच्छी है किंतु कम अभी, इसलिए सत्ययुग नहीं हो रहा है। उस दुनिया के बाद में ऐसी स्थिति हो सकती है जो साधु अधिक हो असाधु कम। रावण एक दो उस समय में, आजकल रावण लाखों है जो स्त्रियों का अपहरण करते, उनको सम्मान नहीं देते। भारत में हम लोग ऐसा कोई जगह नहीं, हम प्रचार हमारे आर्य ऋषि लोग भी, हमारे शंकराचार्य रामानुजाचार्य उनसे भी पहले वो वात्स्यायन ऋषि अर्जुन ऋषि इत्यादि बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर रहते थे, जन्मे थे। ये जम्बूद्वीप के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है जम्बूद्वीप, जम्बू। इसलिए यहाँ पर एक विशाल जमुना जामुन के पेड़ रहते थे और इसकी प्रधानता थी, इसलिए जम्बू अथवा जाम्बवंती जम्बवान ऋषि वहां पर रहते थे, भालू रामचंद्र जी के परिकर। अथवा और भी बहुत से कारण हैं,
इसका गुफा भी है जम्बू में,
ऐसे बहुत से कारण हैं, इसलिए इसका नाम जम्बू रखा गया। कश्मीर को भूस्वर्ग कहते थे, देवताओं का निवास कहते थे, अच्छे सज्जन लोग, शांत लोग रहते थे। भारत वहां भारत के दूसरे प्रांतों से लोग आते थे यहाँ पर शिक्षा के लिए, इसलिए यहाँ पर शारदा पीठ थी। वो सब ज्ञान लुप्त हो गया, यही जो मैं बतला रहा हूँ यही सब। और कुछ यही तो मैंने कहा पहले ही, आज साधु समाज भी बिगड़ेल हो गया है, बहुत से अच्छे लोग हैं जो राजनीति के पचड़े न पक करके वो चाहते हैं कि धर्म जथा धर्म के द्वारा राजनीति संचालित हो। राजनीति के द्वारा जहां धर्म शासन हुआ तो वो तह तक नहीं धर्म के पहुंच सके। आजकल धर्माचार्यों के भी बहुत से लोगों, सब नहीं, अधिकांश लोगों की ऐसी है, इसीलिए ऐसा समाज जोड़ने के बजाय तोड़ रहे। हम लोग समाज को नहीं तोड़, हम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध सिख सबके अंदर में एक आत्मा देखते हैं। उन्होंने की बात किया, गाय सुअर हाथी सब में एक आत्मा को देखते हैं, इसलिए सबको जोड़ने का काम करते हैं। और भारतीय संस्कृति इसी को जोड़ने के लिए है, विश्व में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो समाज को, लोगों को, जीवों को जोड़ सके। आप लोग भी इस विचार को समझेंगे तो जोड़ने का काम कर लेंगे, आप ही साधु हैं। क्यों लाल कपड़े से साधु और दंड से नहीं होता, विचारों से साधु और असाधु। रावण भी तो ब्राह्मण का लड़का था, रावण हिरण्यकश्यप भी मनुष्य ही था, बड़ा सुंदर सुकांत शरीर, फिर तो अपने व्यवहारों से वह शुद्ध कहलाए। आज शूद्र कहलाते हैं, हमारे यहाँ पहले ऐसी जाति नहीं थी जो शूद्र का बेटा शूद्र हो। हमारे नारद जी तो शूद्र ही के लड़के थे यदि इस विचार से देखा जाए। और जगत के पूज्य है, हमारी शबरी तो भिलनी थी ना, आज भिलनी को देखिए जो कैसी थी, रामचंद्र भगवान उसके दरवाजे पर गए, उसका जूठा खाया। हनुमान जी तो बंदर के रूप में थे, और सब में जंगली जाति आजकल के लोग कहते हैं जवाहरलाल के लिए झूठ बात, उनको कितना सम्मान है बतलाइए, सवेरे उनका नाम जपते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं, स्त्रियों को कितना सम्मान है। मुसलमान हमारे यहाँ पर बहुत से हो गए हैं, रहीम खनखना और रसखान इत्यादि, जिसका हम सब लोग आदर करते हैं उनके विचारों को, इसलिए हम लोग जोड़ते हैं तोड़ते हैं। जो साधु पुरुष है संसार के समस्त जीवों को भगवान से जोड़ते हैं, और नफरत इत्यादि परस्पर है इसको द्वेष इत्यादि को दूर करते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी है, यदि तुम्हारा कोई अपमान करता है, दुख देता है, मारता है, तभी उसका कल्याण करो। इसलिए इन चीजों को आप लोग पढ़ते नहीं है, शास्त्रों के गुड विचारों को किसी से पढ़ करके एक्सपर्ट से नहीं समझते, इसलिए समझ नहीं पा रहे। हमारे आज देश के लोग हैं, इन संस्कृति के विचारों को नहीं जानते। हाँ, पहले देखिए, हमारे राजेंद्र बाबू थे,
राजेंद्र प्रसाद,
हमारे राधा कृष्णन, ये थे हमारे, और उड़ीसा के एक थे गौर, कितने बड़े धार्मिक विचार के, उपनिषदों को विचारों को समझने वाले साधु पुरुष थे, उनको कोई अपने सत्य से डिगा नहीं सकता था। आज वो कितने लोग हैं राजनेता, गांधी जी जैसे कितने लोग हैं जिसके लिए प्राण की कुर्बानी कर दी, ये लोग साधु पुरुष, ऐसा ही साधु बनी है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए।
उन्होंने दूसरा प्रश्न किया था कि हम लोग समाज के लिए मठ और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का,
हम लोग तो यही, आप यही तो प्रचार कर रहे हैं, अपने आप खुद पालन करते हैं। हमारे यहाँ देखिए गोमांस खाने वाले आज उनके साथ में हम लोग गले लगा करके उनको अपना बना लिया, वो जनेऊ पहनते हैं, मांस मछली प्याज लहसुन सिगरेट कोई भी कुछ नहीं खाते, उनका चित्त पवित्र हो गया, उनकी जाति भावना दूर हो गई, ऐसा बतलाइए कौन कर रहे हैं। मुसलमान भी हमारे यहाँ है, ईरान के कितने मुसलमान हमारे शिष्य हैं, चीन के हमारे कितने बहुत शिष्य हैं, रशिया के जितने भी मुस्लिम करीब करीब सैकड़ों हमारे शिष्य हैं, और वो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। आज हम करीब करीब 85 वर्ष के हुए, कितने ग्रंथ इस विषय में लेंगे, वर्ल्ड में इसके करोड़ों रुपए की वितरण हो रहा है, लोग करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं, विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग सब कहां से आए, इनको साधारण मत समझिएगा, बड़े बड़े उच्च फैमिली के लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट एमए पीएचडी के बाद में साइंटिस्ट बने, बहुत दिनों तक काम किया मिलिट्री में, वो लोग ऐसे थे कंप्यूटर रखते जो कहां पर कैसे बम किस डिग्री में अंश में छोड़ा जाए तो वहां पर देश ध्वंस हो जाएगा, करोड़ में हजार में वो लोग सब छोड़ छाट के हमारे पास आए, उनका हृदय का परिवर्तन, ये हम लोग का। आपको इसमें क्या शंका है, अर्थमेटिक के पुस्तक पर आपको विश्वास है और गीता के ऊपर में आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, कुछ पढ़े लिखे गुने नहीं, इससे यही प्रतीत होता है। नहीं तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते। भगवान कौन होता है? जो अंतर्यामी होता है, जो आग पी सकता है, बड़े बड़े पर्वतों को, पृथ्वी को उठा करके लेकर के फेंकते, उसका धन सब विनाश करते। कृष्ण में ऐसी शक्ति थी। यार महाभारत पढ़िए, देखिए। और साधु कैसा कैसा विचार उनका, उन्होंने ये कहा सर्वधर्मान परित्यजमामि एकम शरणं, बस जीवन सुखी हो जाए। आज हम लोग बड़े बड़े विद्वान पीएचडी एमएड ये सब होते हैं, डिलीट करते हैं, किंतु इन विचारों को स्थान हृदय में नहीं देते। इस पर देते हैं कि मैं शरीर हूं। मान ले कि आपकी आत्मा इसमें से निकल जाएगी, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं? आप बोलिए, सोच विचार करके बोलिए। इस शरीर से आपकी आत्मा निकल जाए, बातचीत करेंगे कि नहीं? क्यों? आप तो यही शरीर है, इसी के सुख के लिए करते हैं। और जो निकल गई उसके लिए कुछ जानते ही नहीं, ये कितनी मोटी, कितनी लंबी, काली, गोरी, कैसी थी, जानते हैं? तो कैसे आप सुखी होंगे, कैसे जान सकते हैं? इसलिए अभी जानना जो है, अभी का अभी ये बेकार का है, व्यर्थ। और जब आत्मा का रियलाइजेशन होगा, यहां रहते हुए सारे विश्व ब्रह्मांड को जिस रूप में उसी रूप में देखेंगे, उसको कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, कलह इत्यादि भेदभाव सब समाप्त हो जाए। इसी के लिए संसार के लोग, विश्व के लोग लालायित हैं, वे शांति चाहते हैं। इसलिए हम जहां जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति को जो सम्मान नहीं मिलता है, हमको मिलता है। ये तो जब तक है चेयर पर, इनका सम्मान चेयर तक बंधा हुआ है, चेयर उल्टी और बस गया खत्म। और हम लोग अभी भी पूजा लोग करते हैं और मरने के बाद भी पूजा करते रहेंगे विचारों के कारण।
स्वामी जी, श्रद्धा और अंधविश्वास दोनों में क्या अंतर?
अंधविश्वास तो उसको कहते हैं अंधा होकर के विश्वास कर दिया, समझा नहीं कुछ, विश्वास कर दिया। ओ, तुम्हारी क्या पगड़ी देखो तो लेकर के आकाश में कोई, आपका कान लेकर के कौआ देखो चला गया, आप रोने लगे जो मेरा कान तो कौआ ले गया, ये अंधा विश्वास। और सचमुच में उसे समझ बुझ करके, अनुभव करके, जो आदर होता है, श्रद्धा माने होता है आदर, जब हम करते हैं तो उसको श्रद्धा, जहां पर सचमुच में है, इन रियलिटी जहां ट्रूथ है, वो विश्वास श्रद्धा है। दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। और बेकार का व्यर्थ ही जो विश्वास किया, वो अंधविश्वास।
सही भक्त श्रद्धा से पूजा करता है, अंधविश्वास से पूजा करता है,
दोनों प्रकार से होते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास से पूजा करते हैं बिना समझे, इसलिए कोई सर्प की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है जो जल में तीर्थ समझ करके उसकी पूजा करता है, कोई मनुष्य को पूजा करता है, कोई भूत पिशाच की पूजा करता है। इन रियलिटी में जब आत्मा को समझ करके परमात्मा का जब की पूजा करेगा तो वो रियल है।
जो अनपढ़ आते हैं,
अनपढ़ से कोई संबंध नहीं, हमारी माताएं बहनें सब अनपढ़ थी, किंतु भगवान के प्रति और सचेतता थी और व्यभिचार उनमें नहीं था, जो बात कहती थी वो होता था। आज पढ़ी लिखी होकर के क्या हो रहा है? सर्वनाश। पश्चात देश की शिक्षा जो है वो सब सर्वनाश।
भगवान के अंधविश्वास,
आप पहले बतलाइए, ये आज से पहले आप 60-70 वर्ष पहले महिलाओं को देखा था जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका चरित्र और आजकल की पढ़ी लिखी हुई स्कूल कॉलेजों में जाने वाली को कितना ये अंतर है, समझते हैं? आजकल किसी भी लड़की जो कि स्कूल में जाती है उसका चरित्र ठीक है, करोड़ों में से दो एक। हम लांछन नहीं लगा रहे, मैं सत बात कह रहा हूं। इसलिए इस चीज को समझिए, फिर देखेंगे आप रियलिटी के तह पर आएंगे।
पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुसरण भारत की सभ्यता को किस ओर ले जाए? हाँ, विनाश की तरफ ले जाए, संपूर्ण विनाश की तरफ ले जाए। इसलिए हम लौट आए, हम अपनी पहली माताओं जैसे बने, पिताओं जैसा बने, पढ़े लिखे नहीं किंतु अंतर में ज्ञान था। पढ़े लिखे के ऊपर में ये ज्ञान नहीं होता। जितने आज ये आतंकवादी कहे जा रहे हैं वो क्या है? साइंटिस्ट, साइंस पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं कि कैसे ये चलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है बम, ये जानते हैं। पहले के लोग नहीं जानते थे। हृदय कितना निर्मल होता है।
तो स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक आदमी पढ़ा लिखा है वो लॉजिक के बेस पे भगवान की पूजा करता है, तो एक आदमी अनपढ़ है वो अंधविश्वास से भगवान की।
अनपढ़ मत शब्द व्यवहार कीजिए। अनपढ़ किसको कहते हैं? पढ़ना सुनिए, दो प्रकार का होता है, एक अक्षरात्मक ज्ञान पढ़ते हैं और एक आदमी पढ़ा ऊपर से तो कफा बन ही पढ़ा, किंतु अपने माता से, पिता से, दूसरों से, साधु संतों से जो ज्ञान को सीखा सुन करके, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? इस चीज को समझिए। अक्षरात्मक ज्ञान की तरफ में मत जाइए, सब कुछ ज्ञान की सतह में समझिए। जो कोई एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं और अपने माता पिता साधुओं के संतों से उस चीज को रियलाइज किया हुआ ज्ञान कर रहा है, इसमें पहले श्रुति होती थी, श्रुति माने अवेद कहते हैं, किंतु श्रुति माने सुन करके ज्ञान उपलब्ध होता था, चारों वेद समझ जाते थे। और आजकल पढ़ लिख करके ही क्या करते हैं? चोरी डकैती सीखते हैं, पाश्चात्य अंग्रेजों की सभ्यता सीखते हैं।
महात्मा जी
मत कहिए, हम भी आपके जैसे
हैं।
आजकल महात्मा का भी दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैं डरता हूँ महात्मा सुनने से।
हमारे बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें साइंटिफिक आवाज नहीं है, जिसमें साइंटिफिक नहीं है।
साइंटिफिक
ऐसे कोई ग्रंथ है जिसमें साइंटिफिक आधार नहीं है?
साइंटिफिक किसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं?
जो प्रूव हो जाए।
नहीं नहीं, साइंटिफिक किसको कहते हैं? इसको सुनो, विज्ञान को कहते हैं साइंस। विज्ञान में क्या आजकल का साइंस अधूरा है, यह मन को नहीं खोज सकता, आपकी आत्मा को नहीं समझ सकता, इसलिए अधूरा है। जिस दिन ये विज्ञान पूर्ण होगा उस समय समझेगा। इसलिए साइंटिस्ट को ऐसा मत समझिए जो वो निर्भ्रांत हो गए, और सत्य चीज को समझ लीजिए। लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं जी, ये भी होगा ये नहीं भी होगा, हमारे यहां ऐसी बात है। बात का दिया यही है और यही चीज है।
महाराज जी, क्या गुरु के बिना ज्ञान
होता है? नहीं होगा। एक हारमोनियम बजाना नहीं सीखते आप, जो रिपोर्टर बने हैं आपने कहीं सीखा कि ऐसे ही बन गए? इसलिए बिना गुरु का कैसे हो जाएगा? आपके माता पिता तो पहले गुरु जी खाना सिखलाया, पैखाना करना सिखलाया और शौच करना सिखलाया, तो बिना गुरु के कैसे हो जाएगा? आजकल गुरु नाम से भड़क रहे हैं, टीचर से, मास्टर से, प्रोफेसर से नहीं भड़कते, किंतु बात एक ही है।
सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो सकती
है? सच्चे गुरु जब आप सच्चे हो जाएंगे तो समझेंगे। जब तक आपको सच्चे का बुरा का ज्ञान ही नहीं है, एक एमए क्लास का व्यक्ति या पीएचडी हो तो एमए को पढ़ा सकता है, समझ सकता है ये एमए है। एक मैट्रिक का लड़का वो कैसे समझेगा ये एमए है? भी तो समझ लीजिए। इसलिए पहले इसका ध्यान। और सच्चा संत का ऊपर से एक लक्षण यह है, संसार के भोगों से विरक्त रहेगा और सारे प्रश्नों की मीमांसा कर सकता है, शांत प्रशांत हो और अथाह ज्ञान संपन्न हो, तब तो होगा। ये गुरु और विष्णु का, संतों का यथार्थ। संसार का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको उसको डिगा सके सत्य से, आंतरिक रूप में उसको संसार से वैराग्य और भगवान में विशेष अनुराग रहेगा। यदि सत्य वस्तु है तो एक है और वही एक भगवान है परमात्मा, उनको अल्लाह खुदा जो कुछ भी कहे।
महाभारत में अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण ने कई जगहों पर छल किए हमारी भाषा में छल किए।
ये आपका समझने का भ्रम है। एक मैया ने आपको कहा, आपकी मैया ने आपको कहा, जिसके आपको प्यारे हैं, कहा वो कोई फल खाने जा रहा था और उसमें सांप ने खाकर के कुछ विष दे दिया। मैया ने आपसे बहाना कुछ बनाया और खाने नहीं दिया, तो ये क्या चीज है? इसे इसको समझिए। एक मैया ने आपको थप्पड़ जड़ दिया, आग में हाथ देने जा रहा था, ये दया है कि ये निष्फलता है? ये समझिए। साधु संत और भगवान की कृपा भी ऐसी होती है दो रूपों में, एक शासन करके और एक प्यार करके। शासन भी प्यार का ही एक अंश है, किंतु वैसे लोगों का, साधारण लोगों का नहीं, वो तो ईर्ष्या द्वेष से भरा होता है।
एक घंटा से अधिक
हो गया। आप लोगों को धन्यवाद है। यदि हमारे विचारों को यदि आप लोग जनता तक ले जाए तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, और आप लोगों का हृदय भी यदि कुछ ले सके, यदि अच्छा है तो और अच्छी बात होगी। आप लोग इसका प्रचार करके कश्मीर को भी शांत कर सकते हैं। आग से आग नहीं बुझती, देश से देश नहीं बुझेगा, शांति से ही आप शांति। यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा ये सब अज्ञानता के वजह से, हिंदू मुसलमान हम समझते हैं कि शत्रु हैं, देश से समझ जाएंगे एक ही खुदा और भगवान की संतान है, दूर हो सकते। बस आज ही प्रकट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, ये आना चाहिए पेपर आप लोगों के संभालो।